एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज ज्ञान गोष्ठी में हम बात कर रहे हैं अब्राहम लिंकन की, उनका जीवन, उनका नेतृत्व, और ये सब डॉरिस कर्न्स गुडविन की एक बहुत ही मशहूर किताब टीम ऑफ राइवल्स, द पॉलिटिकल जीनियस ऑफ अब्राहम लिंकन के आईने में। वाकई कमाल की किताब है ये।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है। गुडविन इसमें लिंकन की जो राजनीतिक समझ है उसका विश्लेषण करते हैं, और खास तौर पर ये कि कैसे उन्होंने अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मनों को ही अपनी सबसे भरोसेमंद टीम बना लिया।
अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, 1809 से 1865 तक उनका जीवन रहा, पर आज उनकी कहानी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
देखिए, वो उस समय राष्ट्रपति बने जब अमेरिका गहरे राजनीतिक बंटवारे से गुजर रहा था।
बिल्कुल आज जैसे हालात लगते हैं कई बार।
हाँ ये तो है, और उनका तरीका कि कैसे विरोधियों की ताकत का इस्तेमाल एक साझे मकसद के लिए किया जाए, ये आज के इस पोलराइज्ड माहौल में लीडरशिप का एक बहुत बड़ा सबक है।
मतलब उन्होंने ये दिखाया कि महान नेतृत्व सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि लोगों को साथ लाने में है, भले ही वो आपके विरोधी क्यों ना हो।
बिल्कुल सही, उन्होंने साबित किया कि असल लीडरशिप विरोधियों को हराना नहीं, उनकी एक क्षमता को पहचानना और साथ लाना है। चलिए उनकी कहानी को थोड़ा शुरू से देखते हैं, समझते हैं कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे।
हाँ शुरू करते हैं उनके बचपन से। केंटकी में जन्म हुआ एक बहुत ही साधारण एक कमरे वाले लकड़ी के घर में। गरीबी थी, अस्थिरता थी,
और माँ का देहांत भी बहुत जल्दी हो गया। कहते हैं इन सब चीजों का उनके चरित्र पर गहरा असर पड़ा, एक तरह की उदासी, मेलंकली जिसे कहते हैं, वो उनमें आ गई।
लेकिन शायद इसी वजह से उनमें दूसरों के दुख को समझने की वो जो सहानुभूति या कंपैशन कहते हैं वो भी बहुत ज्यादा विकसित हुई।
हाँ ये संभव है, ये जो मेलंकली थी ये सिर्फ बोझ नहीं थी। इतिहासकारों का मानना है कि इसने उन्हें ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा सहनशील बनाया। उनके पिता थॉमस लिंकन, वो लगातार बेहतर मौकों की तलाश में परिवार को घुमाते रहे, पहले इंडियाना फिर इलिनॉइज।
अच्छा,
तो इस लगातार बदलाव से हुआ ये कि युवा लिंकन में एक जबरदस्त अडेप्टेबिलिटी, मतलब माहौल के हिसाब से ढल जाने की क्षमता, वो विकसित हो गई।
और उनकी सौतेली माँ साला बुश जॉनस्टन लिंकन, उनका भी तो बड़ा हाथ था शायद।
हाँ बिल्कुल, उस जमाने में खासकर उन सीमांत इलाकों में पढ़ाई लिखाई को उतनी अहमियत नहीं मिलती थी, लेकिन उन्होंने लिंकन के अंदर वो पढ़ने की ललक देखी
और उसे बढ़ावा दिया,
उसे पहचाना और बढ़ावा दिया। ये उनके जीवन का एक अहम मोड़ था, इसमें कोई शक नहीं।
और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उनकी फॉर्मल स्कूलिंग, मतलब स्कूली पढ़ाई, एक साल से भी कम थी।
हाँ वो लगभग पूरी तरह से सेल्फ टॉट थे, मतलब खुद से पढ़े लिखे। किताबें मिलना भी मुश्किल था उस जमाने में, पर जो हाथ लगता उसे वो छोड़ते नहीं थे, पढ़ जाते थे।
इससे उनमें ज्ञान की भूख तो जगी होगी, पर शायद एक विनम्रता भी आई होगी कि मैं सब कुछ नहीं जानता।
बिल्कुल, एक बौद्धिक विनम्रता। वो कभी ये नहीं मानते थे कि भाई मैं ही सबसे होशियार हूं, हमेशा सीखने को तैयार रहते थे।
और इसी दौरान उन्हें दास्ता की जो क्रूर सच्चाई थी उसका भी सामना करना पड़ा।
हाँ, युवावस्था में एक बार वो किसी काम से न्यू ऑरलियंस गए थे, और वहां उन्होंने दास बाजार देखा, इंसानों को मतलब जानवरों की तरह नीलाम होते हुए। वो दृश्य उनके मन पर बहुत गहरा असर कर गया। कहते हैं वहीं उनके मन में दास्ता के खिलाफ एक मजबूत नैतिक विश्वास पैदा हो गया, एक दृढ़ संकल्प कि अगर मौका मिला तो इस व्यवस्था पर चोट जरूर करूंगा।
तो ये उनके जीवन के एक बड़े मिशन की शुरुआत थी।
हाँ, नींव पड़ गई थी।
स्कूल भले ही कम गए पर उनकी जो अनौपचारिक शिक्षा थी वो तो कमाल की थी।
हाँ,
बाइबल, ईसप की कहानियां, शेक्सपियर।
हाँ, इन्हें वो बार बार पढ़ते थे, और साथ ही इन्होंने कई तरह के काम किए, रेल की पटरियां बिछाई, स्टोर में क्लर्क रहे, पोस्टमास्टर बने,
छोटे मोटे काम।
हाँ, इन कामों से उन्हें आम लोगों से जुड़ने का मौका मिला, उनकी भाषा, उनकी सोच, उनकी परेशानियां, मानव स्वभाव की वो समझ उन्हें मिली जो शायद उनके पढ़े लिखे ऊंचे तबके के प्रतिद्वंदियों के पास थी ही नहीं।
और यही जमीनी समझ उनकी राजनीतिक ताकत बनी आगे चलकर।
बिल्कुल, उन्होंने फिर खुद ही कानून पढ़ा, वकालत शुरू की, और 1830 के दशक में इलिनॉइस में राजनीति में आ गए।
सफर आसान नहीं रहा होगा शुरू में?
नहीं बिल्कुल नहीं, सफलताएं भी मिली, असफलताएं भी। कांग्रेस में उनका एक कार्यकाल रहा 1847-49 तक, लेकिन वो कार्यकाल तो लगभग उनका राजनीतिक करियर खत्म ही कर देता।
अच्छा, ऐसा क्या हुआ था?
उस समय मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध चल रहा था, और लिंकन ने उसका खुलकर विरोध किया। उन्हें लगता था कि ये युद्ध गलत है, अन्यायपूर्ण है।
लेकिन युद्ध का विरोध करना उस समय शायद लोकप्रिय नहीं था।
बिल्कुल नहीं, उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी। वो दोबारा चुनाव भी नहीं लड़े, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें एक बड़ा सबक सिखाया।
क्या?
राजनीतिक टाइमिंग का महत्व और सिद्धांत बनाम व्यावहारिकता का संतुलन। मतलब सिर्फ सही होना काफी नहीं है, अपनी बात कब और कैसे कहनी है ये भी जरूरी है।
और फिर आया 1854 का कैनसास नेब्रास्का अधिनियम। इसने जैसे लिंकन को फिर से सक्रिय कर दिया।
हाँ, कह सकते हैं कि इसने उन्हें राजनीतिक नींद से जगा दिया। इस कानून ने दशकों पुराने एक समझौते को रद्द कर दिया और नए क्षेत्रों में दास्ता खेलने का रास्ता खोल दिया,
जो लिंकन के मूल विश्वास के बिल्कुल खिलाफ था।
बिल्कुल, उन्हें लगा कि ये देश की स्थापना के सिद्धांतों के विपरीत है, और बस यहीं से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं फिर जाग उठी। वो दास्ता के विस्तार के खिलाफ एक राष्ट्रीय आवाज बनकर उभरे।
और इसी वजह से 1858 में स्टीफन डगलस के साथ उनकी वो मशहूर बहसें हुईं।
हाँ, इलिनॉय सीनेट चुनाव के लिए। वो चुनाव तो हार गए, लेकिन उन बहसों ने उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया। उनकी तर्क क्षमता, उनकी नैतिक स्पष्टता, लोगों ने उसे पहचाना।
और फिर 1860 में न्यूयॉर्क का वो कूपर यूनियन भाषण।
हाँ, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उस भाषण ने उन्हें सिर्फ पश्चिम का एक नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद का एक गंभीर दावेदार बना दिया। उसने पढ़े लिखे पूर्वी लोगों को भी प्रभावित किया।
1860 का रिपब्लिकन नॉमिनेशन भी तो काफी दिलचस्प था। उनके सामने विलियम सीवर्ड, सैल्मन चेज, एडवर्ड बेट्स जैसे ज्यादा अनुभवी नेता थे। फिर लिंकन कैसे चुने गए?
ये उनकी टीम की रणनीति का कमाल था। देखिए, लिंकन किसी एक गुट के पहले पसंदीदा उम्मीदवार नहीं थे।
अच्छा,
लेकिन वो लगभग हर गुट के दूसरे पसंदीदा थे।
हाँ, ये सुना है मैंने।
उनके मैनेजरों ने इसी का फायदा उठाया। जैसे जैसे वोटिंग के राउंड बढ़ते गए, दूसरे उम्मीदवारों के समर्थक अपने नेता के हारने पर लिंकन की तरफ आते गए।
एक तरह से सर्वसम्मति वाले उम्मीदवार बन गए।
हाँ, और इसमें एक और बात थी। लिंकन ने पहले ही संकेत दे दिया था कि अगर वो जीते तो अपने मुख्य प्रतिद्वंदियों को कैबिनेट में जगह देंगे।
ये सिर्फ कोई राजनीतिक चाल थी या उनका विश्वास था?
मुझे लगता है ये दोनों था। राजनीतिक चतुराई तो थी ही, लेकिन ये उनका गहरा विश्वास भी था कि देश जिस संकट से गुजर रहा है उससे निपटने के लिए सबसे अच्छे दिमागों को साथ लाना जरूरी है, भले ही उनके विचार कितने भी अलग क्यों ना हों।
और राष्ट्रपति बनते ही उन्हें सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ा। दक्षिणी राज्य अलग हो रहे थे, गृह युद्ध का खतरा मंडरा रहा था।
और उन्होंने अपना वादा निभाया भी। हाँ, उन्होंने अपने सबसे कट्टर विरोधियों को कैबिनेट में लिया। सीवर्ड विदेश मंत्री, चेज वित्त मंत्री, बेट्स अटॉर्नी जनरल, ये सचमुच की टीम ऑफ राइवल्स थी।
और फिर अप्रैल 1861 में फोर्ट सम्टर पर हमला हुआ और गृह युद्ध शुरू हो गया। अब लिंकन के सामने दोहरी चुनौती थी, देश को बचाना और इस मुश्किल कैबिनेट को साधना।
बिल्कुल, गुडविन बताती हैं कि शुरुआत में सीवर्ड जैसे लोग खुद को लिंकन से ज्यादा काबिल समझते थे। उन्हें लगता था कि असल में सरकार वही चलाएंगे।
लेकिन लिंकन ने धीरे धीरे अपना अधिकार जमाया।
हाँ बिल्कुल, दो घटनाएं खास तौर पर ये दिखाती हैं। एक तो था 1861 का ट्रेंट अफेयर।
वो क्या था?
एक अमेरिकी जहाज ने एक ब्रिटिश जहाज से दो कन्फेडरेट राजनयिकों को पकड़ लिया था। इससे ब्रिटेन से युद्ध छिड़ने का खतरा हो गया था। कैबिनेट में बहुत गर्मा गर्मी हुई। सीवर्ड और कई लोग सख्त रवैया चाहते थे,
लेकिन लिंकन
लिंकन ने शांति और कूटनीति से काम लिया। उन्होंने राजनयिकों को छोड़ने का आदेश दिया और युद्ध टाल दिया। इससे ये साफ हो गया कि वो दबाव में शांत रह सकते हैं और कैबिनेट की सलाह सुनने के बाद भी अपना स्वतंत्र फैसला ले सकते हैं।
और दूसरी घटना
वो थी 1862 की पेनिनसुला कैंपेन। यूनियन आर्मी का कन्फेडरेट राजधानी रिचमंड पर कब्जा करने का एक बड़ा अभियान था। जनरल थे जॉर्ज मैक्लेलन। बहुत काबिल थे, पर बहुत ज्यादा सतर्क और धीमे। लिंकन और कैबिनेट के कई सदस्य उनकी इस सुस्ती से परेशान थे। लिंकन ने लगातार मैक्लेलन पर दबाव बनाया, उन्हें निर्देश दिए, और जब वो नाकाम रहे तो लिंकन ने उन्हें पद से हटाने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई।
इससे पता चलता है कि वो सैन्य मामलों में भी अपनी पकड़ बना रहे थे और कड़े फैसले लेने से डरते नहीं थे।
हाँ, भले ही इससे उनके जनरल या कैबिनेट के सदस्य नाराजी क्यों ना हो।
और फिर आता है मुक्ति उद्घोषणा, इमैन्सिपेशन प्रोक्लेमेशन का वो ऐतिहासिक फैसला। उसके पीछे क्या सोच थी?
ये लिंकन के नेतृत्व का एक और बेहतरीन उदाहरण है। 1862 तक युद्ध लंबा खिंच चुका था। यूनियन को कोई निर्णायक जीत नहीं मिल रही थी और पार्टी के अंदर कैबिनेट में दास्ता को खत्म करने का दबाव बढ़ रहा था।
लिंकन तो खुद भी दास्ता के खिलाफ थे नैतिक रूप से।
बिल्कुल, लेकिन उन्हें इसे खत्म करने के लिए सही वक्त और एक संवैधानिक आधार चाहिए था, तो उन्होंने इसे एक युद्ध उपाय के तौर पर तैयार किया, मतलब युद्ध जीतने के लिए जरूरी कदम।
अच्छा, सिर्फ नैतिक आधार पर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव की तरह।
हाँ, उन्होंने महीनों इस पर सोचा, कैबिनेट में बात की, लेकिन आखिरी फैसला अपने पास रखा। उन्होंने इंतजार किया एंटीटम की लड़ाई में यूनियन की जीत का, ताकि ये घोषणा कमजोरी का संकेत ना लगे।
टाइमिंग।
बिल्कुल, जनवरी 1863 में ये आखिरकार जारी हुई। इसने कानूनी तौर पर सिर्फ विद्रोही राज्यों के दासों को आजाद किया, सीमावर्ती वफादार राज्यों के नहीं।
पर इसका असर तो बहुत बड़ा हुआ होगा।
जबरदस्त, इसने युद्ध का मकसद ही बदल दिया। अब ये सिर्फ देश को बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दास्ता को खत्म करने की लड़ाई भी बन गई। इसने अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए यूनियन सेना में भर्ती का रास्ता खोल दिया, और यूरोपियन देशों, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस के कन्फेडरेसी को मान्यता देने की संभावना लगभग खत्म कर दी।
ये दिखाता है कि वो कैसे नैतिक लक्ष्य और राजनीतिक समझदारी दोनों को साथ लेकर चलते थे। उनके आखिरी साल कैसे रहे?
वो भी बहुत अहम थे। उन्होंने 13वें संशोधन को कांग्रेस से पास करवाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिसने पूरे देश में दास्ता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनका दूसरा शपथ ग्रहण भाषण मार्च 1865 का शायद अमेरिकी इतिहास के सबसे महान भाषणों में से एक है।
किसी के प्रति द्वेष नहीं, सबके लिए दानशीलता।
हाँ, विद मैलिस टुवर्ड नन, विद चैरिटी फॉर ऑल। उसमें उन्होंने युद्ध के बाद सुलह और माफी की बात की। वो दक्षिण के राज्यों को वापस संघ में लाने के लिए उदार पुनर्निर्माण योजनाओं पर काम कर रहे थे।
लेकिन अफसोस, वो ये सब पूरा होते देख नहीं पा रहे। 14 अप्रैल 1865 को उनकी हत्या कर दी गई, युद्ध खत्म होने के बस कुछ ही दिन बाद।
हाँ, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। एक ऐसा नेता चला गया जो शायद युद्ध के जख्मों को भरने में सबसे ज्यादा कामयाब हो सकता था। उनकी मौत ने उन्हें अमरीकी इतिहास में लोकतंत्र और आज़ादी के शहीद के तौर पर हमेशा के लिए अमर कर दिया।
लिंकन के इस पूरे जीवन को देखें तो उनके मूल विचार, उनके मूल्य क्या थे, क्या चीज थी जो उन्हें चलाती थी?
देखिए, उनके दर्शन के केंद्र में थी मानवीय समानता और नैतिक प्रगति में आस्था। वो मानते थे कि इंसान भी और देश भी बेहतर बन सकता है। हमें अपनी प्रकृति के बेहतर देवदूतों की सुननी चाहिए, जैसा उन्होंने कहा था।
उनका लीडरशिप का तरीका भी इसी से जुड़ा लगता है। वो अकेले हीरो नहीं बनना चाहते थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सामूहिक ज्ञान, कलेक्टिव विजडम को व्यक्तिगत प्रतिभा से ज्यादा मानते थे। इसलिए तो उन्होंने जानबूझकर ऐसे लोगों को साथ रखा जिनकी अपनी सोच थी, जो उनसे असहमत होने का दम रखते थे।
उनका वो कथन भी है, मुझे वो आदमी पसंद नहीं, मुझे उसे बेहतर जानना चाहिए।
हाँ, ये दिखाता है कि वो विरोध को समझने की कोशिश करते थे, उसे कुचलने की नहीं। ये उनके आत्मविश्वास को भी दिखाता है।
उनके धार्मिक विचारों के बारे में क्या कहा जाता है? वो पारंपरिक रूप से धार्मिक थे?
उनके निजी धार्मिक विचार थोड़े जटिल थे। वो किसी एक चर्च के सदस्य नहीं थे, लेकिन प्रोविडेंस, मतलब एक उच्च शक्ति या ईश्वरीय योजना में उनका विश्वास बहुत गहरा था, और ये विश्वास समय के साथ और मजबूत होता गया, खासकर युद्ध के दौरान।
इससे उन्हें शायद मुश्किल वक्त में हिम्मत मिलती होगी।
हिम्मत भी और विनम्रता भी। वो मानते थे कि सब कुछ उनके नियंत्रण में नहीं है। जैसा उन्होंने एक बार कहा था, मैं घटनाओं को नियंत्रित करने का दावा नहीं करता, बल्कि साफ तौर पर मानता हूँ कि घटनाओं ने मुझे नियंत्रित किया है। ये गहरी विनम्रता है।
उनकी प्रेरणा क्या थी? क्या सिर्फ राष्ट्रपति बनने की इच्छा?
महत्वाकांक्षा तो हर नेता में होती है, उनमें भी थी। लेकिन गुडविन कहती हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा अमेरिकी लोकतांत्रिक प्रयोग को बचाना था। वो मानते थे कि अमेरिका दुनिया के लिए एक उम्मीद है।
लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए सरकार
को बचाना।
हाँ, गेटिसबर्ग भाषण की वो लाइन।
ग्रे युद्ध उनके लिए इसी बात की परीक्षा थी, और दास्ता को खत्म करने की उनकी जिद भी इसी से जुड़ी थी। वो मानते थे कि दास्ता लोकतंत्र के विचार के ही खिलाफ है। ये उनके लिए एक नैतिक मुद्दा था, सिर्फ राजनीतिक नहीं।
मुश्किलों और आलोचनाओं का सामना वो कैसे करते थे, ये जानना आज भी बहुत जरूरी है।
यहाँ उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ का रोल आता है। लिंकन अपनी भावनाओं को और दूसरों की भावनाओं को समझने और संभालने में माहिर थे। गृहयुद्ध के दौरान उनकी भयानक आलोचना हुई।
हाँ, अखबारों में कार्टून बनते थे, बहुत कुछ कहा जाता था।
बिल्कुल, लेकिन वो शायद ही कभी गुस्से में या व्यक्तिगत हमला करके जवाब देते थे। वो पहले समझने की कोशिश करते थे कि आलोचक कहे क्या रहा है, उसका इरादा क्या है। कई बार तो वो आलोचना में छुपी सच्चाई को मान भी लेते थे।
ये तो बड़ी बात है।
हाँ, और उनकी वो मिलैंकली, वो उदासी, वो भी एक तरह से दोधारी तलवार थी।
कैसे?
एक तरफ तो वो उनके लिए एक निजी बोझ थी, उन्हें डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे, लेकिन दूसरी तरफ शायद इसी वजह से वो दूसरों की पीड़ा को इतनी गहराई से समझ पाते थे। उनमें सहानुभूति और करुणा कूट कूट कर भरी थी और यही चीज उन्हें लोगों से जोड़ती थी।
चलिए अब उन तीन निर्णायक पलों की बात करते हैं जिन्होंने लिंकन के जीवन और अमेरिका के इतिहास को बदल दिया। पहला आपने बताया था कैंसास नेब्रास्का अधिनियम।
हाँ, हे अमोन, कैंसास नेब्रास्का अधिनियम संकट 1854। हुआ ये कि इस कानून ने पुराने समझौते को रद्द करके नए इलाकों में दास्ता फैलने का रास्ता खोल दिया। ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये लिंकन के इस विश्वास पर सीधा हमला था कि अमेरिका को दास्ता से मुक्त होना चाहिए। इसने उन्हें राजनीति में वापस आने और दास्ता के विस्तार के खिलाफ लड़ने पर मजबूर कर दिया। और इसने बदला ये कि लिंकन एक स्थानीय नेता से राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। उनका मकसद साफ हो गया। जैसा उन्होंने कहा, इस घटना ने उन्हें पहले कभी नहीं की तरह जगा दिया था।
अप्रैल 1861, ये राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद हुआ। हुआ ये कि दक्षिण कैरोलिना में एक संघीय किला फोर्ट सम्टर कन्फेडरेट सेना के घेरे में था। रसद खत्म हो रही थी। लिंकन को तय करना था किला छोड़ दें या मदद भेजें और युद्ध का खतरा उठाएं। ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस एक फैसले पर उनके प्रशासन की इज्जत, सीमावर्ती राज्यों का साथ, उत्तर का समर्थन, सब कुछ टिका था। और इसने बदला ये कि लिंकन ने बीच का रास्ता निकाला, सिर्फ खाना भेजा, हथियार नहीं। इससे कन्फेडरेट्स को पहला हमला करने पर मजबूर होना पड़ा। इस समझदारी भरे फैसले ने कैबिनेट में उनका दबदबा कायम किया और दिखाया कि वो दबाव में कितने शांत और रणनीतिक हो सकते हैं।
तीसरा मोड़, मुक्ति उद्घोषणा का निर्णय 1862-1863। हुआ ये कि महीनों सोचने और कैबिनेट में बहस के बाद लिंकन ने मुक्ति उद्घोषणा जारी की, जिसने विद्रोही राज्यों के सभी दासों को आज़ाद घोषित कर दिया। ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने गृह युद्ध का मकसद ही बदल दिया। अब ये सिर्फ देश बचाने की नहीं, दास्ता मिटाने की लड़ाई बन गई। इसने यूरोप को दूर रखा, रिपब्लिकन पार्टी को एकजुट किया और सबसे बड़ी बात, लगभग 2,00,000 अफ्रीकी अमेरिकी सैनिकों को यूनियन सेना में शामिल होने का मौका दिया। और इसने बदला ये कि लिंकन एक सतर्क राजनेता से दास्ता के पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध नेता बन गए। ये उनके विकास को दिखाता है और ये भी कि देश बचाने के लिए वो असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाते थे।
ये तीनों मोड़ वाकई दिखाते हैं कि कैसे लिंकन ने मुश्किल हालात का सामना किया और इतिहास का रुख मोड़ दिया। अब अगर हम आज के लिए देखें तो लिंकन के जीवन से हम क्या मानवीय सबक सीख सकते हैं?
बहुत कुछ। पहला तो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व। लिंकन की कामयाबी सिर्फ उनके दिमाग की वजह से नहीं थी, बल्कि अपनी और दूसरों की, खासकर अपने विरोधियों की भावनाओं को समझने और संभालने की उनकी काबिलियत की वजह से थी। ये आज के लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं है।
हाँ, समझदार और हमदर्द होना भी जरूरी है।
दूसरा सबक, जो सीधे टीम ऑफ राइवल से आता है, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको चुनौती दें। लिंकन ने जानबूझकर ऐसे लोगों को चुना जो उनसे असहमत थे। उन्हें डर नहीं था कि ये लोग उन्हें कमजोर करेंगे,
बल्कि उन्हें विश्वास था कि अलग अलग विचारों के टकराने से ही बेहतर फैसले निकलेंगे।
ये आत्मविश्वास की निशानी है, असुरक्षा की नहीं। आज कितने नेता ऐसा कर पाते हैं?
सोचने वाली बात है।
तीसरा सबक है रणनीतिक धैर्य और सही समय का महत्व। जैसे मुक्ति उद्घोषणा, उन पर बहुत दबाव था जल्दी करने का, पर उन्होंने सही राजनीतिक और सैनिक वक्त का इंतजार किया। बिल्कुल, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर चीज पर तुरंत रिएक्शन देना होता है, लिंकन हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी रुकना, सोचना और सही वक्त का इंतजार करना ज्यादा असरदार होता है।
चौथा सबक है चरित्र का लगातार विकास। लिंकन कोई रातों रात महान नहीं बन गए थे। वो लगातार सीखते रहे, अपनी गलतियों से सीखते रहे, हालात के मुताबिक खुद को ढालते रहे, और उनकी विनम्रता।
हाँ, ये मानना कि मुझे सब नहीं पता, इसी ने उनके विकास को मुमकिन बनाया। ये याद दिलाता है कि सीखना और बदलना कभी बंद नहीं होता।
और पांचवा, नैतिक स्पष्टता और राजनीतिक व्यावहारिकता का संतुलन। वो नैतिक रूप से दास्ता के खिलाफ थे, ये उनकी स्पष्टता थी, लेकिन इसे कैसे और कब खत्म करना है, इसके लिए उन्होंने राजनीतिक हकीकत को समझा, ये उनकी व्यावहारिकता थी।
उन्होंने आदर्शों को छोड़े बिना जमीनी सच्चाई का ध्यान रखा। ये दिखाता है कि आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, यानी आदर्शवाद और यथार्थवाद, साथ साथ चल सकते हैं।
आज के इतने बटे हुए माहौल में लिंकन का ये मॉडल दुश्मनों को सहयोगी बनाना, असहमतियों के बाद भी मिलकर काम करना शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है।
हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि मतभेदों के बावजूद बातचीत और सहयोग मुमकिन है। आसान नहीं है पर मुमकिन है।
तो इस पूरी बातचीत के अंत में अगर हमें तीन मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी?
पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। सच्ची महानता माफ करने की क्षमता और सहानुभूति में, खासकर उनके प्रति जो आपके विरोधी हैं। लिंकन ने निजी हमलों को नजरअंदाज किया और अपनी तकलीफों को देश की तकलीफ समझने की ताकत बनाया। ये उन्हें लोगों से जोड़ता था।
दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। लिंकन की असली राजनीतिक प्रतिभा सिर्फ उनके भाषणों में नहीं बल्कि अपनी प्रतिद्वंदियों की टीम को संभालने की कला में थी। अलग अलग विचारों को साधना, बहस को बढ़ावा देना, पर आखिर में फैसला लेना और सही वक्त चुनना, ये सोची समझी रणनीति थी, किस्मत नहीं। ये बताता है कि लीडरशिप सिर्फ विजन नहीं, उसे लागू करना भी है।
और तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। आपका चरित्र ही आपकी किस्मत तय करता है। लिंकन का जीवन दिखाता है कि विनम्रता, सीखने की इच्छा, नैतिक साहस और सहानुभूति जैसे गुण किसी भी साधारण इंसान को असाधारण हालात का सामना करने और महान नेतृत्व देने लायक बना सकते हैं। ये सिर्फ इतिहास का सबक नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास और लीडरशिप का एक टाइमलेस सिद्धांत है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।